अयोध्या और 3 लाख में द्वारका और 4 लाख में वृंदावन का वीजा और पासपोर्ट
आरम्भ कर,
ऐसे ठगों से दूर रहे, इनकी नरक की गति होगी। और फिर वो 2 दिन के बाद में किसी स्त्री को लेकर और कुछ रुपए लेकर के भाग जाते हैं कहीं संसार, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करते। तो भक्ति का स्वरूप बतलाते हुए मैं बतला रहा हूं, बतला रहे हैं, अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्मात्नामृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति। भगवान कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, विशेष करके भगवान कृष्ण के प्रति हमारी यदि भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दो बतलाए गए। स्वरूप लक्षण में ये बतलाया गया, अनुकूलेन कृष्णानुकूलनम भक्ति उत्तमा, कृष्ण को जो अच्छा लगता है, रुचिकर है, और प्रतिकूल भावना को छोड़कर कृष्ण की नयन सर्जमयी तैधारावत अभिन्न गति से चित्त की वृत्तियों के द्वारा अपने जितने भी तन मन वचन इत्यादि हैं, समस्त इंद्रियाएं हैं, मन है, उसके द्वारा कृष्ण की सेवा का नाम भक्ति। फिर से समझिए, हम लोगों को एकादश इंद्री हैं, मन बुद्धि की अहंकार इत्यादि का, हाथ पैर नाक कान ये सब चीजें, जिह्वा इत्यादि ज्ञान इंद्री, इन सब चीजों से यहां तक कि मन से भावना के द्वारा जितनी प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं कृष्ण के सेवा के अनुकूल रूप में हो, अर्थात कृष्ण प्रसन्न हो इस रूप में हो, तब तो ये भक्ति कहलाएगी, ये स्वरूप निकालेगी। किंतु ये भक्ति नहीं होगी जब तक कि कुछ प्रादेशिक जो लक्षण है ना आ जाए। क्या आप भगवान का भजन करते हैं किंतु दूसरी दूसरी कामनाएं, हे भगवान मुझे पुत्र नहीं हो रहे हैं, पुत्र हो जाता आपकी भक्ति करते, हमें राज्य नहीं है, ध्रुवों ने राज्य के लिए भगवान नारायण की आराधना की, भक्ति तो ऊपर से दिखती है किंतु अन्य अभिलाष कृष्ण की भक्ति हो, कृष्ण प्रसन्न हो, किस लिए हमको राज्य दे दे जो पिता के द्वारा हमको नहीं मिली, और वो हमको सहज रूप में हमको भक्ति दे दे करके और सारे पृथ्वी का राज्य हमको दे दे। इसको भक्ति नहीं कहते, इसको कहेंगे किसी प्रकार की संसारी कोई कामना न हो, मुक्ति की भी कामना न हो और कृष्ण की सेवा हो, तब तो वो भक्ति है। ध्रुव जी ने राज्य के लिए भगवान की आराधना बिना खाए पिए, पानी भी छोड़ दिया, हवा लेना भी बंद कर दिया, 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, भगवान उनकी भावना को समझ गए और बोले, प्रकट हुए, दर्शन दिया शंख चक्र गदा पद्म के रूप में और बोले 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का निष्कंटक राज्य करो और देकर के अंतर्ध्यान। भगवान के लिए क्या इन्होंने किया, समय हो गया, क्या हुआ, भगवान की सेवा कहां हुई, भगवान को प्रसन्न करके अपनी सेवा करा दी। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, एक बेटा माता की गोदी में खेलता है, मैया उसको स्तन देती है, प्यार करती है, अब ये बेटा सेवा कर रहा है या मैया बेटा की सेवा कर रही है, क्या है, बेटा मैया की सेवा कर रहा है न मैया सेवा कर रही है, बाप सेवा कर रहे हैं, स्तन पिला रही है, उसके मलमूत्र को धो रही है, रोगों को रात भर जग करके उसकी सेवा करती है, तो मैया सेवा कर रही है ना। तो यदि कोई भगवान के लिए आराधना की है, प्रभो आप हमारी सेवा करेंगे, रुपए पैसे धन संपत्ति पुत्र देकर के राज्य देकर के, ये भक्ति हुई क्या, विचार कीजिए, भगवान को अपना उसने वो ऑर्डरली बना दिया, हम जैसा कहते हैं भगवान करो। एक आदमी शंकर जी के चौकट को ऐसे ऐसे पकड़ करके दबाता, किस लिए, एक पैसे का कोई बताशा भोग लगाए, किस लिए, आप प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो गए, हमको एक बेटा ने, हमारा लड़का पास नहीं हो रहा है परीक्षा में, 5 वर्ष तक फेल हो गया वो पास, हमारी बीवी को कोई लड़का नहीं है, उसको एक लड़का दी। ये भक्ति हुई कृष्ण के लिए, प्रीति के लिए हो तो भक्ति कहते हैं, ये भक्ति का ये लक्षण। दूसरी बात एक और, ज्ञान कर्म अध्या अनावृतम, पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए तब फिर मैं 5 मिनट और बोलूंगा, थोड़ा सा एक कीर्तन बीच में कर दूंगा। कृष्ण या भगवान की सेवा की प्रवृत्ति हो और उनको उस सेवा में प्रसन्नता हो, ऐसी सेवा हमको करनी है। ये तो स्वरूप लक्षण हुआ। तन मन वचन की सारी चेष्टाएं भगवान के लिए हो, अपने लिए कुछ कुछ उनके लिए, ऐसा नहीं किसी प्रकार की आकांक्षा कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उनकी सेवा बढ़े, भक्ति बढ़े, उनके प्रति प्रीति बढ़ेगी, इसके अतिरिक्त कोई संसारी यहाँ तक कि मुक्ति की कामना रहेगी तो वो भक्ति भक्ति नहीं, वो विकार हो जाएगी। दूसरा उसका एक लक्षण और बतलाया, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। जब तक हम जीवित हैं कर्म करने के लिए बाध्य हैं, सांस लेने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए, हवा लेने के लिए, इसके लिए बाध्य हैं। किंतु कर्म ऐसे होने चाहिए जो भक्ति के अनुकूल, भक्ति को ढक देने वाले कर्म हों। बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो भक्ति को ढक देते हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान कर्म योग तपस्या से मिली हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल एक योग चला है दिल्ली और यहाँ बड़े बड़े मैदानों में, पार्कों में देखते हैं, यहाँ तक कि सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका, चारों तरफ पार्कों में देखते हैं कि योग होते हैं। योग माने क्या? हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये योग है। क्या इससे होगा? शरीर की तंदुरुस्ती होगी, ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है, किंतु ये योग हुआ कि नहीं? योग किसको कहते हैं? दो वस्तुओं के मिलन को योग कहते हैं। इस चीज को समझिए ना, शरीर को हिलाया हिलाया, सांस प्रश्वास रोक दिया, इसमें योग कहाँ हुआ? किससे, किस चीज का किससे योग हुआ? दो वस्तु एक और एक मिलकर के योग हुआ कितना? दो। दो और 10 मिलकर के योग हुआ 12। तो ये जो हाथ पैर हिलाते हैं, श्वास प्रश्वास से योग दिखलाते हैं, इसमें किससे किसके साथ में योग किया? जीरो, कुछ नहीं। इसलिए ये योग नहीं है, लोगों को ठगते हैं। हाँ कहो जब व्यायाम करते हैं ठीक है, योग मत नाम दो। जो कहते हैं जीवात्मा का परमात्मा के साथ हो योग, और वो बीच में योग का वो चीज हो प्रेम, प्रेम के द्वारा जीवात्मा और भगवान का योग होता है, इसको कहते हैं भक्ति योग। कर्मों के साथ में भगवान के योग को कर्म योग कहते हैं, ज्ञान के साथ में भगवान का योग होने पर उसे ज्ञान योग कहते हैं। गीता ने इन तीनों योगों को बतलाया है। भगवान के साथ उसका संयोग नहीं, वो योग नहीं है, बेकार का वो एक चीज, फालतू परिश्रम है, शरीर का कसरत है, उससे कुछ लाभ नहीं होने का। 2 दिन के बाद में आप जो कर ना करें करें, बहुत से लोग तो 150 वर्ष तक जीवित रह रहे हैं, कुछ योग नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ जो करने से शरीर के लिए तो ठीक है, आत्मा के लिए योग क्या हुआ? इसलिए जो कहते हैं दो वस्तुओं के मिलन को जो, इसलिए भक्ति में भगवान और जीव के साथ में मिलन होता है प्रेम के द्वारा, इसलिए इसको भक्ति योग कहते हैं। तो योग और कर्म और ज्ञान ये हमारे लिए आवश्यक है, ये बात ठीक है, किंतु ऐसे न हो कि भक्ति को ढक दें। जैसे आपको देखिए महाराज हरिश्चंद्र कहते थे कि मैं सत्य बोलने वाला हूँ, और स्वप्न में उन्होंने राज्य दे दिया विश्वामित्र को। सवेरे विश्वामित्र जी आए, बोले जैसे तुमने हमको राज्य दिया, और तो कब दिया? तो स्वप्न में। हाँ हाँ स्वप्न में तो दिया, ठीक है, अब दक्षिणा दो और संकल्प करो। संकल्प उनसे करवाया, ये सारा राज्य आपको देता हूँ। उन्होंने कहा कि अब जरा दक्षिणा दे दो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। बड़े प्रसन्न राजा भय और बोले जैसे खजानची, अभी खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं ला करके इनको दो। सारे झूठे बेईमान और मूर्ख, तू कहता है कि ये राज्य जब दे दिया तो खजाना तेरा कैसे रह गया? ये सारा राज्य मेरा हो गया, खजाना भी मेरा हो गया, कुंजी तुम्हारे पास मरेगी और तुम देगा, ये मेरा हो गया। झूठ अभिमान छोड़ो, अब तू राजा नहीं रहा, अब सोने की मुद्राएं कहां से दें? मैंने कहा जी अच्छा तो मैं बेच करके अपने को दूंगा। कहिए हमारे राज्य में मत बेचना। उनका सारा पृथ्वी में राज्य कहां बेचें? सिर खुजलाने लगे। अच्छा जाओ काशी में बेच लेना, काशी त्रिशूल पर शंकर की खड़ी है। वहां गए, डोम के हाथ में अपने को बेचा 5,000 मुद्राओं में और अपने बेटे को 2,500 में, अपनी स्त्री को बेच दिया। बेच तो दिया कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, ये अभिमान गया कि नहीं? ये मेरी पत्नी है, बेच दिया, किंतु रोहिताक्ष मेरा बेटा है, ये गया? ये नहीं गया। ये तुम्हारा जो हरिश्चंद्र नाम है ये कब से सत्य है? पहले भी था, मरने के बाद रहेगा, जन्म से पहले था? शरीर का नाम है कि आत्मा का नाम है? किसका नाम है ये हरिश्चंद्र? ये हरिश्चंद्र को पता नहीं था, अपने को बड़ा भारी भक्त समझते थे। ये है कर्मी, असत्य असत्य का भी ज्ञान नहीं है। विश्वामित्र को उन पर दया हुई, इसलिए सर्प बनकर के उसके बेटे को काट आए और उसकी रानी विलाप करती हुई मरघट पर आई, रोने लगी, बिजली कड़की। डोम हरिश्चंद्र जी ने देखा, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। कहा जैसे फिर भी मैं संस्कार नहीं करने दूंगा, इसके लिए जो टैक्स है वो टैक्स दे करके संस्कार, मेरे पास तो कुछ नहीं, नहीं तो फिर वो चीर अपना अपने कपड़े का अंचल का वो चीर फाड़ करके देने लगी। इतने में वहाँ पर धर्म भी प्रकट हो गए, विश्वामित्र भी प्रकट हुए। विश्वामित्र ने कहा यही चीज तुमको जानना चाहता, ये शरीर में मैं का अभिमान और शरीर से दूसरों के प्रति अभिमान, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, यही तो अभिमान है जो संसार में हमको लाया। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, हम सच्चिदानंद में हमारा, इस चीज को भूल करके शरीर को मैंने मान लिया। इतने बड़े हरिश्चंद्र, मेरा राज्य ये झूठा है कि सत्य है? राज्य को लेकर के आए, मरे तो राज्य लेकर के जाएंगे। बेटा किसका, पत्नी किसकी? अभिमान मात्र। हो सकता है हरिश्चंद्र की उसे दूसरे जन्म में पत्नी हो और उनकी स्त्री उनके पति हो, उनसे कोई संबंध नहीं हो। ये सब संबंध जो है मिथ्या है, यही संसार है, मिथ्या माया और ममता। हरिश्चंद्र को जब ये ज्ञान हुआ, उनकी कृपा से ये हुआ, तब भक्ति में आए, नहीं के पहले भक्ति से संबंध नहीं था, कर्मी थे, सत्य और असत्य का उनको कोई ज्ञान नहीं। ऐसे कर्मों के द्वारा भक्ति ढक जाती है। यदि हम भक्ति करते हैं, मैं ये शरीर हूं, ये मेरे हैं, भाई ऐसे भक्ति नहीं है, ये ममता, अनाशक्ति होकर के ममताओं को छोड़ करके, धन इत्यादि वैभव कई सारी संपत्ति का मोह छोड़ करके भगवान का सुखदेव गोस्वामी जैसा भजन करो, महाराज जनक के समान में भजन करो, गोपियां जैसे गोपों जैसे भजन करो, संसार में रहती थी उनके सर्वस्व कृष्ण, कृष्ण के लिए सब करते। एक बात और समझिए, उतना मैया बन करके गई ब्रज में, हाँ मेरा लाल तुम यहाँ पलंग पर बैठे हो, ये तुम्हारी मैया नहीं है, मैं अपने हृदय से तुम्हें नहीं निकाल सकता, तुम हमारे हृदय में रहो। उठा लिया, जसोदा जी और रोहिणी मैया देखती रह गई, देखा सचमुच में हम इसकी मैया होने योग्य नहीं, ये इसी की यथार्थ मैया, बड़ी सुंदरी रूपवती, 16-17-22 वर्ष की सुंदर षोड़शी बन करके आई, मैया का जैसा श्रृंगार करके और ऐसे प्रेम करके बेटा बेटा करके उठा दिया। बेटा तो था नहीं, राक्षसी थी, बालकों का रुधिर पीती थी, उनका मांस ऐसे खा जाती थी, बेस बनाया मैया जैसा, कृष्ण को उठा लिया, स्तन दिया और पंप किया, ऐसे बीस उसके कृष्ण के मुख में गया, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, पीस तो लिया ही, साथ साथ में किया, उसके प्राणों को भी ले लिए, अब प्राणों को लेकर के उसे पवित्र कर दिया, माता की गति दे दी, यह है भगवत्ता। यदि कोई ऐसा करने में समर्थ है तो भगवान है। और इस राक्षसी का भी चित्त परिवर्तन करके उसकी आत्मा को शुद्ध करके दे दिया हुआ। अच्छा, ये जो गई गोकुल में मैया का वेश बना करके और बेटा बेटा करके संत रही है, ये कृष्ण की सेवा हुई कि नहीं हुई, या धोखा देना है भगवान को, क्या है? ऐसे लोग भगवान की सेवा करने जाएं और भगवान की सेवा ना करके अपने लिए कुछ करें और भगवान का विरोधी भाव रखें, ये सेवा नहीं हुई। दूसरी तरफ में देखो, दूध उफन रहा है, जसोदा मैया दधी मंथन कर रही, और मंथन मंथन करते करते करने कृष्ण में चित्त वृत्ति एकदम लग गई, और क्या करें, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो, गोविंद जसोदा जी कैसी सुंदरी है जिसका बेटा इतना जगत सुंदर है, तो जसोदा मैया नहीं सुंदरी हो तो बेटा कहां से इतना सुंदर होगा। बड़ी रूपवती, गुणमती, मधुर थी, गुणों की अलंकार उसमें भरे पड़े थे। जब वो गा रही हैं ऐसे हाथ की सोने की कंगन चूड़ियां सुंदर सुंदर मीठी मीठी करताल जैसी झंकार कर रही है, और दधि मंथन का जो स्वर उठ रहा है धिक्तान धिक्तान जैसा, माने उन लोगों को धिक्कार है जो कृष्ण का भजन नहीं करते, उनको धिक्कार है। खूब सुंदर रूप से तन्मय होकर के गा रही है। कृष्ण आते हैं सो करके उठ करके मैया मैया खोल के उनके पास में उनका दधि मंथन पकड़ लेते हैं। यशोदा मैया उनको लेकर के गोदी में बैठा लेती हैं, आंख से आंसू आ जाते हैं, दर्द द्रवित हो जाता है, और कृष्ण को गोदी में रख करके अंचल मिट्टी पा करके स्तनदान करने लगती हैं। पाटी में चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफनता है। उफनता क्या है? यशोदा के स्तन में इतना दूध, लाखों जन्म तक कृष्ण यदि चूसे तो अभी खत्म नहीं होगा। और कृष्ण का पेट जिसमें असंख्य पोर विश्व ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, उनका कभी भूख नहीं कभी खत्म होगी, समाप्त नहीं होगी, तो कृष्ण पीते रहेंगे, यशोदा पिलाती रहेंगी, हम जो दूध है उसकी सेवा नहीं कर सकती, तो जल में आग में जल मरना ही अच्छा है, ऐसा सोच करके भक्त मानो दूध आग में जल रहा। जिसने भगवान का इस जन्म में सेवा नहीं की, जीवन रखने का कोई तात्पर्य नहीं, वो मरा हुआ है, मरे हुए के समान है। इसलिए दूध उफन रहा है मरने के लिए, आग में जलने के लिए यशोदा में कृष्ण को बैठाया वहां जल्दी से, बैठ यहां। 16,000 हाथियों का बल लेकर पूतना कृष्ण से अपने स्तन को नहीं छुड़ा सकी, और वो स्तन पीता हुआ ही 6 माइल का रूप धारण करके वो गिर पड़ी, मर गई, किंतु उसको छुड़ा नहीं सकी। और यशोदा मैया एक गोपी होकर साधारण बैठ यहां, और कृष्ण स्वयं भगवान समस्त ईश्वरों के ईश्वर षड़ैश्वर्यशाली, उनका बल कुछ भी काम नहीं किया और उनको लेकर के बैठा दिया। दांत कड़मंड करने लगे, क्रोध कृष्ण को आ गया, होठ चबाने लगे। अच्छा, ये कृष्ण रोने लगे पीछे, तो ये यशोदा मैया कृष्ण की सेवा कर रही हैं तो ये तो कृष्ण को रुला रही हैं, तो ये रुलाना कृष्ण की सेवा हुई? तन मन वचन से कृष्ण की सेवा वृत्ति का नाम भक्ति है। तो ये जो यशोदा जी उनको रुला रही हैं और कृष्ण रो रहे हैं, और कभी कभी कान मल दिया अच्छी तरह से कन्हैया को, फिर करेगा नहीं मैया चंद, लड़कियां लेकर के उनको धमकाती हैं, कमर बांध दिया और कृष्ण रोते हैं, बदलाव तो ये भक्ति हुई? हाँ भक्ति हुई, क्यों? कृष्ण के लिए ही कर रही है, पीछे से चोट ना हो, झूठ ना बोले, हमारा बेटा ऐसा हो, इसलिए कर रही, हमारे दूध से कृष्ण की परवरिश नहीं होगी, मक्खन गाय का आता है, दूध आता है, इससे होगा, इसे मक्खन बनाएंगी, इसे रेवड़ी बनाएंगी, उसे राबड़ी बनाएंगी, संदेश बनाएंगी, कृष्ण को खिलाएंगी। इसलिए उनकी, जैसे मैया अपने बेटे को किसी कारण से मारती है, क्रोधित होकर के नहीं मारती, आग में हाथ दे रहा, बार बार जाता है, बस एक थप्पड़ जम गया, तो रोना लगा। ये प्यार से इसमें प्रेम छिपा है, इसलिए यशोदा मैया के इसमें प्रेम छिपा हुआ है। इसलिए यशोदा जी का कृष्ण को ये ऐसा करना भी ये भक्ति की चरम सीमा है, जो लोग समझेंगे समझेंगे। गोपियां कृष्ण को धूर्त कर रही, चोर कर रही, लंपट कर रही, और कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि वेद स्तुति सुनने से भी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? प्रेम भरा पड़ा है उनकी प्रत्येक क्रियाओं में, उनके दर्शन में, उनके हृदय में, उनकी बोली चाली में, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है, अखंड प्रेम है। राधा जी अपने प्रेममयी सेवा से कृष्ण को वशीभूत कर लेती हैं। ये है भक्ति का स्वरूप। इसको समझने के लिए अब थोड़े से दो मिनट में अपना प्रसंग समाप्त करूंगा, 7 बजने के लिए आया हूं। आप लोग इसको खूब अच्छी तरह से सावधानी से सुनेंगे कि ये भक्ति का क्या स्वरूप है। रामचंद्र जी अपने पिताजी का आदेश पालन करने के लिए राज्य का अभिषेक छोड़ करके सीता जी और लक्ष्मण जी लेकर के धीरे 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 चित्रकूट में पहुंचे हैं। भरत जी और शत्रुघ्न नदीहाल में थे, वहां से वशिष्ठ का सूत गया, उनको बुला करके लाया। लाने के बाद में उनके स्वागत करने के, उनका स्वागत करने के लिए सारी अयोध्या मानो विधवा बनी हुई है, कोई नहीं आया, कोई उनको पूछा नहीं। पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, भैया राम रहते तो जरूर होता, जरूर आते। अच्छा पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो दौड़ करके हमसे मिलने के लिए आते। कई कई के घर पर गए, सामने देखा सेंदूर नई और सफेद कपड़े में वो खड़ी है, और पार्टी में वो मंथरा है, मंथरा जी है। बड़े आओ भगत क्या, बेटा बेटा आओ आओ। भैया पिताजी कहाँ? पिताजी तो परलोक सिधारे। परलोक सिधारे क्यों? तो तुम्हारे राज्य के लिए मैंने इनसे प्रार्थना की कि तुम यहाँ के राजा। भैया कहाँ है? भैया राम वो तो जंगल में गए 14 वर्ष के लिए। हमने देखा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक निष्कंटक हो, इसलिए 14 वर्ष के लिए उनको वन में जाने के लिए राजा से मैंने वर मांगा। अच्छा तू तो मेरी मैया नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, यह संबंध हम सदा के लिए काट देते हैं। आज से तुम हमको मैया मत कहना, बेटा मत कहना, और मैं तुमको मैया नहीं कहूँगा। आज यदि राम भैया प्रसन्न नहीं, बिगट नहीं जाते, क्रोधित नहीं होते, तो मैं आज तुम्हें काट देता। जिनके प्रिय न राम बैजे ही सजी कोटि बैरी सम जद परम स्नेह सजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु सजव कंत पर भजन है जग मंगल का। यदि भगवान जिसके प्यारे नहीं है, माता माता वो माता नहीं है जो भगवान के चरणों में भक्ति नहीं सिखाती, पिता पिता नहीं है जो भगवान के चरणों में भक्ति नहीं सिखलाती, वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान के चरणों में हमें नहीं समर्पित करते, वो पत्नी नहीं है जो पति को भगवान की सेवा में न लगाए, वो पति कहने का अधिकारी नहीं है तालाने का जो अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति में न लगाए। समस्त चीजों का भक्ति ही सार है। पिता ने अपने प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया क्योंकि भगवत विरोधी था। भरत जी ने अपनी मैया को छोड़ दिया। गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया। बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने बंधु अपने भाई विभीषण को त्याग किया। किस लिए? जिनके प्रिय न राम बेदे, जिनके प्रिय न राधा कृष्ण, उनको छोड़ देना चाहिए, परम स्नेही हो, ये भक्ति का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं भरत जी अपने भैया को मनाने के लिए उनको तो संबंध तोड़ करके चले। सारी सेनाएं गई, वशिष्ठ जी गए, यहाँ तक कि कौशल्या को लिया, सुमित्रा को लिया, इन ये कैसाई रोने लगी जैसे हमको भी बहन लेते चलो कौशल्या से कहा, उनको भी लेते गई। चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट में पहुंचने पर भरत जी रोते रोते कौशल्या के पास में गए, बोले जी मैया एक बात कर, राम तुम्हारे आदेश का पालन नहीं, कभी भी विरोध नहीं कर, उल्लंघन नहीं कर, एक बार तू राम से कह दे जो भक्त जो कहता है अयोध्या में लौट आइए और राज्याभिषेक का आपका हो, तो ये अच्छा है, तुम एक बार कह दो। कहते मैं तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं? अरे भाई तुम प्रेम के बहुत आगाध हो, प्रेम आगाध तुम में है, पर राम के प्रति तुम्हारा प्रेम है, ये बात सत्य है। किंतु राम भी तो धर्म का फजा है, वो हिमालय की तरफ में अटल अड़ल है, वो पिता के आदेश को मान करके आया है, मैं कैसे कहूं कि पिता का आदेश उल्लंघन करके आ जाए। फिर गए वशिष्ठ जी के यहां, गुरु जी हमारी एक प्रार्थना है, रात के समय में आप कृपा राम को आदेश दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप आदेश दें कि वो लौट आए अयोध्या में और राज्य ग्रहण। वशिष्ठ जी ने कहा मैं कैसे कहूं, वो भी ठीक रास्ते पर है, आप भी ठीक है, किंतु मैं नहीं कर। दोनों ने इनकार किया। वशिष्ठ जी बोले हाँ एक बात है, यदि उसके बदले में तुम यदि चले जाओ तो हो सकता है, मैं इसे कह दूंगा जिसे तुम्हारे बदले में ये जाएगा तुम आप लौट आए। बड़े प्रसन्न भाई उन्होंने कहा कि हम और शत्रुघ्न दोनों भाई चले जाएंगे और राम और लक्ष्मण दोनों लौट आए सीता। एक और बात मैं कहता हूं, यदि किसी कारण से भी यदि राम नहीं लौटना चाहते तो एक बात किया जाए, लक्ष्मण जी लौट आए और सीता जी लौट आए और मैं लक्ष्मण जी के बदले मैं उनके साथ में चलूं, ये भी ग्रहण कर रहे। अच्छा तो ठीक है, कल ये बातें होंगी और मैं राम से कहूंगा। दूसरे दिन महाराज जनक भी वितरागी ब्रह्म तत्व ज्ञानी वहां पर आए थे, एक तरफ उनको सभापति बनाया गया, ये जो कुछ कर देंगे ये दोनों को मानना पड़ेगा, निर्णय इनके हाथ में रहेगा। एक तरफ में वशिष्ठ जी बैठे उनके पास में, एक तरफ में अयोध्या वाले बैठे, एक तरफ में रानियां बैठी उनकी माताएं बैठी, दूसरी तरफ में राम बैठे और लक्ष्मण जी सीता जी बैठे। अब निर्णय देना है किनको? महाराज जनक को। राम ने कहा कि मैं आप जो निर्णय करेंगे अयोध्या जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा या जैसा करें। भरत जी ने कहा कि आप जो आदेश देने मैं मानने के लिए विवश हूं। महाराज जनक ने अपने गुरु का ध्यान किया और गुरु का ध्यान करने के बाद में बोले कि देखो भरत एक बात सबको संबोधित कर, देखो साधारण जनता मैं आप लोगों के सामने ये देखता हूं, भरत का प्रेम अगाध समुद्र पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है जिसमें हिमालय डूब जाता है, हिमालय 7 मील के करीब में ऊंचाई है और पैसिफिक ओशन कितना है वो 8 मील 10 मील गंभीर है, उसमें हिमालय डूब जाएगा, किंतु हिमालय डूब जाने पर भी इधर उधर टसमस होगा। तो इस भरत जी का प्रेम अगाध समुद्र है जिसका ओर छोर किनारा और नीचा ऊंचाई गहराई इत्यादि का माप नहीं है। किंतु राम का भी धर्म के प्रति इतना निश्चल और सुदृढ़ विश्वास है कि वो समुद्र में डूब जाएगा किंतु सच से मस्त नहीं होगा। इसलिए मैं देखता हूं कि भरत के प्रेम के आगे धर्म की मर्यादा कुछ उसका मूल्य नहीं, इसलिए राम की यहां पर पराजय होती है और भरत की जीत है। इसलिए भरत जैसा कहे वैसा राम को मांग करके अयोध्या का राज्य ले लेना चाहिए या जैसा कहता। सब सारी प्रजाएं बड़ी खुश हुई, भरत जी बड़े खुश हो गए, माताएं खुश हो गईं, वशिष्ठ जी बड़े खुश हो गए। भरत जी तो बहुत प्रसन्न होकर के गुरु जी के चरणों को पकड़ लीजिए, आज तो हमारा अपने प्राण बचा दिया, मैं तो आज मैं प्राण छोड़ देता यदि रामचंद्र जी नहीं लौट आते। जनक जी ने कहा कि देखो भरत तुम्हारी जीत हुई, किंतु एक बात है प्रेम की भी मर्यादा होती है, प्रेम का भी अपना एक सिद्धांत होता है। प्रेम का सिद्धांत क्या है? अपने आराध्य देव जो उसके प्रेमास्पद हैं, आराध्य देव हैं, वो क्या चाहता है ये प्रेमी जो जो भक्त है वो कर क्या चाहता है। जैसे भरत जी हैं भक्त, रामचंद्र जी उनके आराध्य हैं, राम को किस चीज में प्रसन्नता होती है ये भरत पूछे और उसके अनुसार में काम करें, ये प्रेम की मर्यादा है। राम के प्रति भरत का प्रेम अगाध है, इसलिए धर्म की मर्यादा उसमें डूब गई, बात ठीक है, रामचंद्र उसके आदेश पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, किंतु फिर भी प्रेम की मर्यादा है भरत को यह सोचना चाहिए कि राम को किससे प्रसन्नता हो। उन्होंने कहा आज मेरी आंखें खुल गई, हमारे गुरु जी ये जनक जी हैं परमात्मा जी, मैं अब तक अपनी प्रसन्नता देख रहा था, अपनी दृष्टि से ये सोच रहा था ये यहाँ पर आएंगे राम तो मैं खुशी रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा और सब लोग देखेंगे कहा यहाँ भरत ने राम के लिए राज्य छोड़ करके राम को राजा बनाया, किंतु इसमें राम की प्रसन्नता है या नहीं। भरत जी ने कहा भैया अब मैं आपसे आदेश मांगता हूँ, आप किसमें प्रसन्न है ये तो बतलाइए। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी जीत है, मैंने राज्य दे दिया, मैंने राज जो 14 वर्ष के लिए बंसवास था वो तो ठीक है किंतु मैंने राज्य ले लिया, मैं ही राजा हूं, किंतु एक बात है पिता का आदेश पालन करने 14 वर्ष के लिए तुम मेरी प्रतिनिधि बन करके यहाँ का राज्य करो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। बस भरत जी गदगद हो गए, उनकी पादुका ली इसी पर और उसी को प्रतिनिधि बना करके नंदीग्राम में रख करके उसकी सेवा कर रहे हैं, ये प्रेम है। अभी तक भरत जी का मोह था अपने मन से भगवान की सेवा करना, एक बात हमको प्यास लग रही है, हमारा कोई शिष्य आया पंखा दे रहा, मैंने भाई पानी तो लाओ, वो पंखा देख उनको लग रही है गर्मी, हमको गर्मी लग रही है, पानी लाता नहीं, ये सेवा हुई कि नहीं हुई, इस चीज को समझो, वो भी सेवा है किंतु गुरु क्या चाहता है, भगवान चाहते क्या है इसको देखो। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं भक्ति, इस चीज पर विचार करो। अपने मन से करते हो तुमको सर्दी में गर्मी पानी गर्म पानी अच्छा लगता है और गर्मी में ठंडा पानी लगता है, अरे उनको कृष्ण को क्या अच्छा लगता है ये तो देखो। इसलिए अपने अन्य अभिलाषा को छोड़ करके भगवान किसमें प्रसन्न होंगे इस चीज को देखो। इसलिए सारी कामनाओं वासनाओं को छोड़ करके तन मन से तैलधारावत अभिचिन्न गति से भगवान की जो सेवा है भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए अपने लिए नहीं, तो इसको शुद्ध उत्तमा भक्ति कहते हैं, यही भक्ति का स्वरूप है। आज यहीं तक अपना प्रवचन मैं समाप्त करता हूँ, आप लोग और संख्या में आएंगे, अब कल से हम लोग इस भक्ति का प्रेम के स्वरूप पर हम विचार करेंगे और ऐसे ही आप लोग उपासना करें। गौर प्रमानंदे।